अध्याय तीन, वर्ण विचार। वर्ण के अंतर्गत अक्षरों के आकार, प्रकार, व्याकरण तथा व्याकरण सम्मत शब्द निर्माण की प्रक्रियाओं को रखा गया है। वर्ण को समझते समय ध्वनि का ज्ञान भी आवश्यक है। ध्वनि उच्चारण करते समय जो स्वर निकल कर सुनाई पड़ता है वही ध्वनि है। ध्वनि की परिभाषा के सुस्पष्ट हो जाने से वर्ण की परिभाषा भी बोधगम्य हो जाती है। लिपि, जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। वर्ण, जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। उदाहरण के लिए अ ई क ख च छ इत्यादि। यहाँ एक शब्द है रोटी। यह शब्द रो और टी इन ध्वनियों से निर्मित है, इसलिए रोटी शब्द वर्ण नहीं हुआ। रोटी शब्द के दो टुकड़े हो जाते हैं, पहला रो, दूसरा टी। संधि विच्छेद करने पर रोटी शब्द के चार टुकड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए रो इजकल टू रो प्लस ओ, टी इजकल टू ट प्लस ई। इस प्रकार के चार शब्द हैं र प्लस ओ प्लस ट प्लस ई। अब ये चार वर्ण हुए क्योंकि इनके टुकड़े नहीं हो सकते। यही मूल ध्वनियाँ हैं जिन्हें वर्ण अथवा अक्षर की संज्ञा प्राप्त है। इन्हीं वर्णों से लिपि की भी उत्पत्ति होती है। वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इनके दो भेद हैं, पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। स्वर, जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ ई उ इत्यादि। स्वर वर्ण ये हैं आ ई ई उ ओ री ए ओ आ। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद माने गए हैं जो निम्नलिखित हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर आ ई उ री, संधि स्वर आ ई उ ए ओ। संधि स्वर के दो उपभेद हैं क दीर्घ स्वर और ख संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर, दो समान मूल स्वरों के मिलने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आ प्लस अ इजकल टू आ, ई प्लस ई इजकल टू ई, उ प्लस उ इजकल टू ऊ, री प्लस री इजकल टू ऋषि। संयुक्त स्वर, दो भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से जो स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ प्लस ई इजकल टू ए, आ प्लस ए इजकल टू ए, अ प्लस उ इजकल टू ओ, आ प्लस ओ इजकल टू ओ। अ ई उ री के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ ई उ ए ओ के उच्चारण में ह्रस्व का दुगुना समय लगता है इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। कहीं कहीं इन्हीं स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगता है, ऐसे स्वरों को पलुत्स कहते हैं। पलुत को प्रकट करने के लिए कहीं कहीं पर स्वर के आगे तीन का अंग लिख देते हैं। उदाहरण के लिए बुधवा रे, मुर्गे का शब्द कुकुरु कु को क को नीचे हलंत और तीन। दूसरा व्यंजन, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना हो उसे व्यंजन कहते हैं। वर्ण व्यंजन निम्नलिखित है, पहला क ख ग न बराबर कवर्ग, दूसरा च छ झ न बराबर चवर्ग, ट ठ ध न बराबर टवर्ग, चौथा त थ द ध न बराबर तवर्ग, पांचवा प फ ब भ म बराबर पवर्ग, छठवा य र ल व बराबर अंतस्थ, सातवा स स ह बराबर उष्म। उच्चारण की सुविधा के लिए ड ढ के नीचे बिंदी लगाकर दो और वर्ण बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सरना में र और चढ़ना में र के। इन दोनों वर्णों के अतिरिक्त फारसी शब्दों और अरबी शब्दों के उच्चारण के उदाहरणत है अ क ख ग ज फ के नीचे बिंदी लगाकर अ क क ख ग ज फ ये नए वर्ण बनते हैं। अक्षरों के उच्चारण स्थान, अक्षरों के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। मुंह के जिस भाग से अक्षर का उच्चारण होता है उसे अक्षर का उच्चारण स्थान कहते हैं। प्रत्येक अक्षर का उच्चारण स्थान निम्नलिखित है। स्थान अक्षर कंठ अ आ क ख ग घ अन ह। स्थान तालु अक्षर ई ई च छ ज झ न य स। स्थान मूर्धा री ट ठ ढ ड न र स। स्थान दंत त थ ध द न ल स। स्थान ओष्ठ अक्षर ऊ ऊ प फ ब भ म। स्थान कंठ और तालु अक्षर ए। स्थान कंठ और ओष्ठ अक्षर ओ। स्थान दंत और ओष्ठ अक्षर व। उल्लिखित व्यंजनों वर्णों में कोई भी ऐसा नहीं जो स्वर उच्चारित किया जा सके। उदाहरण के लिए क वर्ण लीजिए, यदि इसमें से अस्वर निकाल दिया जाए तो उसका क ऐसा रूप हो जाएगा, परंतु इस प्रकार स्वर से अलग करने पर इसका स्पष्ट रूप से उच्चारण करना कठिन हो जाएगा, इसलिए इसमें अस्वर दिया जाता है। इसी प्रकार क्रम में सभी स्वर समस्त व्यंजनों में मिलाए जाते हैं। इसे इस प्रकार समझें, क प्लस अ इजकल टू क प्लस आ इजकल टू का, क प्लस ई इजकल टू की, क प्लस ई इजकल टू की, क प्लस ऊ इजकल टू कू, क प्लस ओ इजकल टू कू, क प्लस ए इजकल टू के, क प्लस ए इजकल टू कै, क प्लस ओ इजकल टू को, क प्लस ओ इजकल टू को। इन नियमों के अनुसार शेष व्यंजनों में इन स्वरों का समावेश है, उदाहरण के लिए ख खा खी खी इत्यादि।